Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Nanda Gam Dham, Nanda Gam Dham, Nanda Gam Dham, Jai Nanda Gam Dham. Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radhesham, 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 Jai Radhesham. Jai Gaura Premanande, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Where is Kishore? तो आप सबका नंदग्राम में स्वागत है. सो नंदग्राम ये कृष्ण भगवान का रहने का घर है, जहां नंद बाबा का भवन है. यहाँ पर शिवजी, यहाँ पर पर्वत बने हुए. आपको परसों बताया था ना मैंने, कैसे तीन देवताओं ने जाकर अनसुया की परीक्षा करनी चाही, तो अनसुया ने उनको शाप दे दिया. उसके बाद में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत बन गए. तो उनको श्री प्रभु रामचंद्र ने यहाँ पर बसाया. उन तीन पर्वतों को प्रभु रामचंद्र ने यहाँ पर स्थापन किया. तो शिवजी महाराज यहाँ पर नंदीश्वर के रूप में विराजमान है. उनके सर के ऊपर नंद भवन बना हुआ है, जहाँ पर यशोदा माई, नंद बाबा, कृष्ण बलराम, रोहिणी देवी सब निवास करते हैं. और इस गांव में सब लोग ग्वाल बाल सखा निवास करते हैं. नंद बाबा के भी चार भाई थे. नंद बाबा के चार भाई थे, दो बड़े दो छोटे. एक उपनंदा, एक अभिनंदा, एक नंद, एक सुनंदा और एक नंदन. यात्रा कोऑर्डिनेटर्स किधर है हमारे? सो बड़े भाई का नाम उपनंद बाबा, दूसरे का नाम अभिनंदा, तीसरे नंद महाराज, चौथे सुनंदा और पांचवे नंदन चाचा. इनका भी विवाह हुआ सबका. उपनंद बाबा को उनके पिताजी ने नंदगांव का राज्य सौंप दिया. ये सब पांचों भाइयों के पिताजी का नाम था परजन्य महाराज. परजन्य महाराज महावन में थे, मथुरा में. बहुत मथुरा नहीं, मथुरा के जमुना पार करके जो महावन है गोकुल, वहां पर उनका राज्य था. उन्होंने यथावकाश राज्य का त्याग करके उपनंद बाबा को राज्य सौंप दिया. लेकिन उपनंद ने क्या किया कि उन्होंने जानते थे कि हमारे पांच भाइयों में से सर्वगुण संपन्न जो है वो नंद है. तो उपनंद ने बड़े होते हुए भी और पिताजी के पास से राज्य प्राप्त करने के बाद भी नंद के श्रेष्ठ गुणों को देखते हुए नंद को यह राज्य सौंप दिया, नंद को राजा बना दिया। ऐसा कभी दुनिया में होता है क्या? सब लोग छोटे पद से ऊपर जाना चाहते हैं, हो सके तो दूसरे के सीने पर पांव रख के आगे जाना चाहते हैं, ये इस दुनिया का रिवाज है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। भगवान के धाम में सब लोग सबको आगे करना चाहते हैं और खुद को पीछे रखना चाहते हैं। दिस इज अनदर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द ब्रिजवासीज। मैडम विल बी इंटरेस्टेड टू नो अनदर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ब्रिजवासीज इज टू ऑलवेज कीप वन सेल्फ लो एंड कीप एवरीबडी एल्स हायर, पुश एवरीबडी हायर। तो अधिकार से राजा बन गया। अभी आप महाभारत में देखते हो ना, वो महाभारत के लोग ब्रिजवासी नहीं है। तो जब पांडु को राजा बनाया गया तो धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हो गया, अरे मैं अंधा हो गया इसलिए मेरे छोटे भाई को राजा बनाया, चलो ठीक है अभी क्या करूं। फिर पांडु मर गया तो तुरंत राजा बनने के लिए आगे आया। चलो वहां पर बात खत्म नहीं हुई, पांडु का बेटा बड़ा था धर्मराज और धृतराष्ट्र का बेटा छोटा था, तो धर्मराज को राजा बनना चाहिए। तो ये नहीं कहा, ये कह रहे कि नहीं मैं बड़े भाई बड़ा भाई हूं मैं और बड़ा भाई का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। और ये इतनी सी ईर्ष्या से पूरा महाभारत की कथा हुई, पूरी महाभारत इतना जो हत्याकांड हो गया, इतना जो कांड हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति को दूसरे की प्रगति उन्नति सहन नहीं हो रही है, उसका अधिकार है फिर भी उसको सहन नहीं हो रहा है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, ये क्यों, मेरा भाई है फिर भी ये क्यों और इसके बच्चे क्यों। और यहां पर पांच भाई है, बड़े भाई को तो बड़े इत्मीनान से अधिकार से राज्य मिला है, लेकिन वो स्वयं वो राज्य मिला हुआ अपने छोटे भाई को दे रहा है ये सोचकर कि राजा जो होता है वो श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति को राजा बनाना पड़ता है। और मुझसे भी श्रेष्ठ, पहले तो वो मान रहा है कि मुझसे भी श्रेष्ठ मेरा छोटा भाई है और उसको बड़े प्रेम से राज्य दे दिया। छोटे भाई ने स्वीकार नहीं किया, उसको मना कर दिया कि आप बड़े भाई हो, लेकिन सब भाइयों ने मिलकर फिर प्रेशर किया उनको कि हम सब भाइयों को मिलकर एक ही इच्छा है कि आपको राजा बनना है। तब जाकर उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने राज्य स्वीकार किया। ऐसे होना चाहिए भाईचारा, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मेंटेलिटी है। आध्यात्मिक जगत में सब लोग एक दूसरे को सहायता ऐसे करते हैं कि अपने आप को नीचा रखते हैं और बाकियों को ऊपर भेजते हैं। यहां पर कहते हैं कि किंकरी भाव है। किंकरी भाव का मतलब क्या है? किम करह, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू नाउ, केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं किम करह, ये नहीं पूछते हैं कि मेरा क्या होगा, कहां बैठूंगा मैं, भगवान के बाजू में बैठ सकता हूं क्या। जैसे हम महाराज जी जब गाड़ी जाते हैं ना गाड़ी से, सब लोग उस गाड़ी में घुसने का प्रयास करते हैं कि हमको भी जरा उसके साथ में बैठने को मिलेगा, और जो जाते हैं उनको बहुत ईर्ष्या करते हैं उनसे कि देखो तुम तो क्या भाई महाराज की गाड़ी में घूमते हो, हमको तो बस से आना पड़ता है। हर आदमी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ना कुछ पद चाहता है। कल टेम्पल का कमांडर बन जाऊंगा, टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, हाँ, या ट्रस्टी बन जाऊंगा, या काउंसलर बन जाऊंगा, या आगे जाकर गुरु बन जाऊंगा, आगे जाकर गुरु जीबीसी बन जाऊंगा, या हमारे जो है ना डायरेक्टर माधवानंद प्रभु, उनका बेटा जो अच्युत है वो छोटा था, बहुत छोटा सा था, एकदम छोटा सा। तो उसके थोड़े दोस्त थे तो हमारे कॉलोनी में बैठे थे वो एक दिन, तो सब भक्तों के बच्चे हैं ये, तो डिस्कस कर रहे हैं तुम क्या बनना चाहते हो। तो कोई बोल रहा है कि मैं ये बनूंगा, कोई ये बोल रहा है मैं बनूंगा। अंतिमतः उनका डिस्कशन इस बात पर आया कि हम सब लोग गुरु बनेंगे। गुरु लोगों में बड़ा मजा होता है, गाड़ी से घूमते हैं, उनको अलग थाली होती है, उनका अलग आइटम उनके लिए मिलता है, उनके लिए माला पड़ती है, उनको दंडवत करते हैं लोग, हाँ उनका बड़ा सम्मान होता है, उनके बारे में बार बार चर्चा करते रहते हैं, वो आए वो गए, उन्होंने देखा उन्होंने कहा उन्होंने किया वो किया, उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, ये बड़ा अच्छा होता है, तो हम सब लोग गुरु बनेंगे। बच्चे हैं बेचारे, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको क्या नजर आ रहा है कि ये बढ़िया है, बहुत ये करना चाहिए, ये पद बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो छोड़ना चाहते हैं। उद्धव जी ने क्या किया बेचारे, उद्धव जी यहीं पर आए थे वो, ये नंदगांव है, कल बताया ना आपको, वो नंद भवन का पता पूछते हैं तो क्या उत्तर दिया था उन्होंने पता के बारे में? यस, दो नदियां बह रही हैं, उसके किनारे से चले जाओ, होते हुए पहुंच जाओगे नंद बाबा के पास। तो उद्धव जी कितने बड़े थे वो, कोई भक्त जो अपने जीवन में इससे और क्या चाहेगा, भगवान का सानिध्य, मैत्री, दोस्ती, सलाह, शिकार खेलना, खाना पीना, उठना बैठना, मजाक करना, हंस परिया, सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब भगवान के साथ में आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन वो बोले मैं जा रहा हूं, यहां पर जाकर मैं आई वॉन्ट टू डिमोट माई सेल्फ नॉट ओनली इजिली बट बाई परफॉर्मिंग तपस्या आई विल डिमोट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि आसानी से मैं तृण का पत्ता नहीं बन सकता हूं, तो मैं कोशिश करके तपस्या करके अपने इंद्रियों को कष्ट देकर कष्ट दूंगा और फिर तपस्या करके तृण का पत्ता बनूंगा ताकि दुनिया मुझे कुचले। ऐसा कुछ आ सकता है? एनीबडी कैन थिंक लाइक दिस इन द मटेरियल वर्ल्ड? नो, ये ईर्ष्या की जगह है, ये भौतिक दुनिया जो है ये ईर्ष्या का राज्य है यहां पर। अरे हम लोग भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, व्हाई ही ओनली, व्हाई नॉट मी, ये यहां का मेंटेलिटी है। वहां का मेंटेलिटी क्या है? किम करह, मैं क्या करूं? ऐसे नहीं कि मैंने माला बनाई है और मैं चाहता हूं कि मेरे हाथों से भगवान को पहनाऊंगा। मैंने बनाई है, मैंने फूल बिने, मैंने झाड़ लगाया था, मैंने पेड़ लगाया था, नहीं, बनाएंगे और दूसरी सखी को दे देंगे, वो सखी भी किसनी को दे देगी। इस तरह से माला जो है बनाई किसने और है और भगवान को पहना किसी कोई और रहा है, कोई उसमें देयर इज नो क्रेडिट, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, लाभ नहीं है कि मुझे कम से कम जिसके लिए माला बनाई है वो मुझे देखेगा कि मैंने माला बनाई है, मुझे थैंक यू बोलेगा, बोलेगा कि इतना बढ़िया माला बनाई है, ऐसे कुछ सराहना करेगा, अप्रिशिएट करेगा, तो मैं वो चाहता हूं मेरे सेवा के बदले में। सेवा के बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करते लोग, ब्रजवासी लोग कुछ भी नहीं चाहते। इतना साल सेवा किया भगवान का, भगवान छोड़ के चले गए, तो ऐसा नहीं कि कहाँ गए वो, चलो गाड़ी करते वहां पहुंचते हैं, परसों बोला था आएंगे, कितने दिनों के आए नहीं, चलो जाके लेके आते हैं उनको। उन्होंने कहा कि हमको आदेश नहीं है ऐसा, तो मथुरा बहुत पास में थी, यहाँ पर अभी भी पास में ही है, चलो रथ निकालो, बैलगाड़ी निकालो, चलो। उन्होंने क्यों नहीं आए वो, लेकिन उनको आदेश नहीं था इसलिए वो यहीं रहे, जब उनकी इच्छा होगी तो बोलेंगे तब जाएंगे। जब बुलाया उन्होंने 125 साल की उम्र में उनके कुरुक्षेत्र में, तब गए यहां से। तो भाव क्या है? किम कर रहा, क्या करूं, जो बताया जाए उतना ही करेंगे, उसके ज्यादा नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे, क्वालिटी भी ज्यादा नहीं कम भी नहीं, जितनी बताई उतनी करेंगे। पीले फूलों की माला बनाओ, बस पीले फूलों की माला बनाई जाएगी, उसमें लाल फूल मिक्स नहीं किया जाएगा, जो बताया वही करना है बस, क्योंकि आदेश के बीच में ही कृपा होती है, जब आदेश पालन होता है तो कृपा होती है। तो ऐसे पांच बड़े भाई सर्वगुण संपन्न और एक भाई को चुन रहे हैं और बोल रहे नहीं आपको ही बनना है, फिर वो बने। फिर हर एक भाई को दो दो बालक हुए और वो कृष्ण भगवान के अष्ट सखा हैं, जैसे राधा रानी के अष्ट सखियां हैं, एक एक भाई की एक कन्या, यहां पर एक एक भाई को दो दो पुत्र हुए और वो भगवान के अष्ट सखा बने। यहां पर बहुत आनंद है, यहां पर ऊपर मंदिर में दर्शन है, उसमें कृष्ण बलराम, यशोदामयी, नंद महाराज सब खड़े हैं, सब परिवार का दर्शन यहाँ पर है। यहाँ पर सब लोग बड़े प्रेम से, पुराने में वर्णन आता है कि 8 सखियों के 8 गांव हैं और अपने अपने गांव में रहते हैं, फिर आती है भगवान की, राधा रानी के आनंद के लिए। लेकिन ये सखा जो है वो इतने भगवान से आसक्त थे कि वो नंदगांव में ही रहे और कहीं गए नहीं रहने के लिए, सब लोग यहीं रहे और यहीं भगवान को निहारते रहे। और भगवान के कई सखा हैं अनेक प्रकार के, कोई प्रिय सखा है, कोई समवयस्क है, कोई प्रिय नर्म सखा है, ऐसे कैटेगरीज हैं उनके। कुछ छोटे हैं, कुछ एक ही एज के हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, हर एक का भाव अलग अलग है। समवयस्क जो है वो उनको डांटते हैं, उनके शरीर पर कूदते हैं, उनसे गेंद खेलते हैं, उनको गेंद में हराते हैं, उनके सर पर चढ़ जाते हैं, राउंड लगाते हैं। छोटे हैं तो उनकी सेवा करते हैं, मैया के पास जाके उनको घुंघरू पहनाते हैं, उनको स्नान में हेल्प करते हैं, उनको वस्त्र पकड़ के खड़े रहते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको हवा देते हैं, उनको अपने जंगा पर लेटा के पैर दबाते हैं उनके, वो थोड़े से छोटे होते हैं। जो बड़े होते हैं थोड़े उम्र से, जैसे मंडली भद्र है, वो सब उनकी रक्षा करते हैं, कोई आ ना जाए, कन्हैया को कोई कष्ट ना दे। मियाँ कहते तुम बड़े हो तो कोई राक्षस आएगा तो रक्षा करना मेरी कन्हैया की, तो कुछ लोग डंडा लेके तलवार लेके ऐसे आगे चलते रहते हैं, जैसे मानो अरिष्टासुर आ रहा है, ऐसा मन में भाव है उनके, क्योंकि आएगा अभी तो फिर वो रेडी रहते हैं इसे। तो कुछ लोगों का दोस्त होते हुए भी बड़े धोने की वजह से सुरक्षा की भावना है। ऐसे यहाँ पर बड़ा आनंद है, सब लोग यहाँ पर बहुत उदम मचाते हैं, बहुत जोरदार सखियों के घर जा जा के माखन चुराते हैं, हाँ परेशान करते हैं उनको, और जब माखन नहीं मिलता है तो पेशाब करते हैं उनके घर पे तो बच्चों के उनके जो छोटे छोटे नन्हे बालक जो पल्ले में सो रहे हैं उनके कान में पानी डालते हैं या तो उनका चिमटा निकालते हैं, बच्चे जोर से रोते हैं क्योंकि जब माखन लेने को आए और माखन नहीं मिल पाया तो ऊंचा है बहुत या तो दूर रखा है तो नहीं मिल पाया, तो गुस्से से पेशाब करते हैं, कभी बच्चे को चिमटा निकालते हैं, कभी कान में पानी डालते हैं, बच्चे को रुलाते हैं, फिर सखी भाग भाग के आती है तो भाग जाते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं और बच्चों को उनके छोड़ देते हैं, सखियों को परेशान कर देते हैं। फिर गोपियां कंप्लेन करने को आती है, देखो देखो तुम्हारा खाना माखन चुराता है, वो तंग करता है, बच्चों को परेशान कर देता है, लेकिन वो बहाना है क्योंकि मेरे घर पे आया था अभी चला गया, वो उसका दर्शन नहीं हो रहा है तो व्याकुल हो रहे हैं, तो कंप्लेंट के बहाने नंद भवन में आते हैं, और मैया तो इधर है लेकिन देख उधर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि वो उनका नजर कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है, उनको देखने के लिए आए हूँ, बहाना बहाना तो कंप्लेन करने का है। ऐसा बहुत दिव्य भाव है यहाँ पर। फिर उनको कभी पकड़ने का प्लान बनाते हैं, कभी घंटी बांध देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी पकड़ते भी हैं और पकड़ने के बाद भी वो डांटते भी हैं कृष्ण भगवान उनको, देखो पकड़ो मत मुझे पछताओगी बाद में जाके, कभी भेष बदल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी परेशान कर देते हैं उनको, संकोच में डाल देते हैं, बहुत चटपटी कहानियां यहाँ पर, बहुत चटपटी कहानियां। और नंदगांव का और भी एक लक्षण है कि नंदगांव में जैसे गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी 16 साल के अवस्था में रहते हैं, किशोर अवस्था में, यहाँ पर बाल स्वरूप में रहते हैं। शिवजी महाराज जो है ऋषि बनकर कैलाश से आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाल स्वरूप का दर्शन गोलोक में भी नहीं है, पृथ्वी पर भाग के आते हैं ताकि उनको कृष्ण का दर्शन बाल स्वरूप में हो जाए। तो मैया कहती है तुम लोग कंस के दूत हो, तुम कंस के दूत हो, कभी घोड़ा बन के आते हो, कभी बैल बन के आते हो, कभी बछड़ा बन के आते हो, कभी हवा बन के आते हो, कभी स्त्री बन के आते हो, कभी गाड़ी बनकर आते हो, अभी रावी साधु बनकर आए हो, जाओ दर्शन नहीं मिलेगा लाला का, सब लोग तुम कंस के चेले हो, सब मेरे बालक को कष्ट देने के लिए और मारने के लिए आते हो, दर्शन नहीं करेंगे, जाओ मोती वोती ले लो चाहिए तो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ। बेचारे गए शिव जी जंगल में, रोने लगे क्योंकि वो तो कंस के दूत नहीं थे, वो तो प्रेम से आए थे, लेकिन इनको पता नहीं है कौन है, यहाँ बैठ के रोने लगे, रो रो के पुकारने लगे ठाकुर जी महाराज को, हमारे ठाकुर जी को दर्शन नहीं होगा, कैसे होगा, कैलाश से आए हैं। तो पूर्णमासी जी आती है, पूर्णमासी जी उनकी पत्नी है, पार्वती जी का अवतार है, गोपी बनकर यहाँ पर सेवा करती है, पूर्णमासी जानती है कि ये कौन है, बड़े दूर से आए, बोलते हैं भैया बड़े दूर से आए हैं, बहुत पावरफुल है। एक दिन कृष्ण भगवान रोने लगते हैं जोरदार, क्योंकि भक्त रो रहा है ना उधर पुकार रहा है, तो उसके लिए मिलने के लिए कुछ मिलना पड़ा नहीं, मैया तो दरवाजे पे खड़ी है, नहीं दरवाजा बंद कर दिया उसने, तो क्या करे, उन्होंने अपना आखिरी अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र निकाल के बोला अभी मैं रोऊंगा, और जब रोऊंगा ऐसा रोऊंगा ना खिलौने से रुकूंगा, ना मक्खन से रुकूंगा, ना गोद में लेने से रुकूंगा, ना स्तनपान से रुकूंगा, ना प्रेम से रुकूंगा, ना कुछ भी रुकूंगा, रोते रहूंगा बस, ऐसा रोए ऐसा रोए ऐसा रोए कि कोई उपाय नहीं हुआ उसका। तब पूर्णमासी आके बोली अरे तो वो बड़े शुद्ध बाबा थे, वो आए थे ना उस दिन, वो भी जंगल में बैठे, उनको बुला लो शायद उनके आशीर्वाद से रोना बंद करे, साधुओं के आशीर्वाद से बीमारी खत्म हो जाती है, शायद कुछ बीमारी लग गई हमारे लाला को। तो जिस साधु को भगाया गया था अपमान करके, उसी को प्रेम से बुलाया गया दोबारा, तो भाग भाग के आए और फिर लाला के दर्शन कराए, रोते हुए लाला आए, जैसे ही चरणों का स्पर्श शिवजी का हुआ, शिवजी ने स्पर्श किया, उन्हें रोना बंद हो गया, तो उनको लगा कि हाँ भाई बाबा बहुत पावरफुल है, बाबा के हाथ लगाते रोने का बंद हो गया। तो पहले जिसको भगा दिया था उसको कहा जा रहा है अरे बाबा तुम यहीं रुको, अभी जब जब लाला रोएगो तब तक तुम्हें बुलाएंगे, तब तुरंत रात बुलाएंगे, तो आप जाओ मत यहाँ से, मतलब केंद्र स्थान में कौन है, श्री कृष्ण है, अगर उसकी सुरक्षा खतरे में है तो वो किसी को भी भगा सकते हैं, अगर उसको संतुष्ट करने की प्लानिंग है तो किसी को भी ठुकरा भी दिया उसको भी बुला सकते हैं, सेंटर में क्या है उसके, श्री कृष्ण की खुशी, उनका प्रेम, उसी के कारण इतने बड़े संत को बिना कुछ हिचकिचाए भगा दिया, उसी को दासियों को गोपियों को भेजकर प्रेम से बुलाया गया और विनती की जा रही है। वो ऐसा नहीं कह रही बड़ी अजीब मैया हो तुम, कभी बोलती हो जाओ, कभी बोलती आओ, कभी बोलती यही हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे मन में क्या है। मन में तो यही है लाला की खुशी और कुछ नहीं है। सब पूरा जीवन मन तन मन बुद्धि भावना सब लाला को समर्पित है। ऐसा अद्भुत क्षेत्र है ये नंदगांव का। तो आज मौनी अमावस्या है, आज महास्नान है, तो सोचा सब लोगों को महास्नान करा दे। और जो महान स्नान के अंदर लोग जाने का प्रयास करते हैं वही यहाँ पर आके स्नान करते हैं, तो बोला यहीं को क्यों लेके
नहीं
आए।
हाँ
हाँ, तो कई कथा ऐसी उसकी कि नंद बाबा के घर में एक दिन मटरी बन रही थी, मटरी मैया जो है मटरी को तल रही थी। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैया क्या बन रहा है, तो मैं कहते मटरी बन रही है। बोले मटरी, मटरी क्या होती है? बोले मटरी वो आइटम होता है जो बहुत दिन टिकता है, और जब सफर में जाते हैं कोई तो मटरी लेके जाते हैं, मतलब वो खाते रहते हैं, खराब नहीं होता है, वो बच जाता है 7-8 दिन 15 दिन तक। बोले सफर में कौन जा रहा है? बोले बाबा जा रहे हैं सफर में। बोले कहाँ जा रहे हैं वो? बोले त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे हैं, प्रयागराज। प्रयागराज मतलब सब तीर्थों का राजा। हाँ, थोड़ा प्रयागराज की कथा बताते हैं आपको। प्रयागराज जो है त्रिवेणी, उसको भगवान ने सब तीर्थों का राजा बना दिया, उसका बड़ा राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक के बाद में प्रयागराज ने कृष्ण भगवान से कंप्लेंट किया, ये आपको एक शिकायत है हमारी कि हमने सबको आमंत्रण दिया था, सब आए तीर्थ उसमें, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है, ये मेरा घर है, बाकी सब तीर्थ होंगे तुम्हारे, हाँ ये वृंदावन मेरा घर है। तो फिर तीर्थ प्रयागराज समझ गया हम कहाँ हैं और वृंदावन कहाँ है। पोजीशन का क्लेरिफिकेशन हो गया उनका। तो उसके बाद में कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा नंद त्रिवेणी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अच्छा, तो उनको ये आइडिया अच्छी नहीं लगी कि बाबा नंद गांव छोड़ के ब्रिज छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा दो कहानियां हैं, एक कहानी ऐसी है कि वो उन्होंने कहा कि अरे बाबा को मिले और बोला क्यों जा रहे त्रिवेणी में, अरे बड़ा तीन नदियों का संगम है वहां पर, गंगा नदी जमुना नदी सरस्वती देवी का संगम है, सरस्वती जमनी के अंदर से आती है, गंगा जी यहाँ से आती है, वहाँ से जमुना जी आती हैं, एक सांवली सी जमुना जी है और एक गोरी सी गंगा जी आती है, बहुत सुंदर दर्शन है वहाँ पर। तो वहाँ स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब ग्वाल बालों को लेकर वहाँ जाए स्नान करके आ जाए। तो कन्हैया जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि बाबा ऐसे करो आप कल मत जाओ, परसों जाओ, परसों तो अक्षय तृतीया है, बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा अच्छा मुहूर्त है जाने के लिए, कोई अच्छा कार्य करने के लिए श्रेष्ठ दिन है। तो बड़ा अच्छी आइडिया है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। लेकिन बाबा जो थे ये उनका नंद सरोवर, नंद सरोवर में राजा है ना वो, अपना कुंड है उनका खुद का, में माता जी का घाट है, यशोदा घाट है, उसके अंदर यशोदा का कुआं है और बहुत सारा राजेशाही, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऐश्वर्य संपन्न उनका सब काम है पूरा। तो अपने ही सरोवर में रोज सुबह उठकर वो स्नान करते हैं बहुत भोर के समय पर, और फिर आखिर नरसिंह भगवान, शालिग्राम, अधोक्षज विष्णु, इनकी सब पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो सुबह सुबह आए, हर रोज की तरह हर रोज करते हैं यहाँ पर स्नान। उस दिन जब आए, अक्षय तृतीया का दिन था वो, मतलब आज मत जाओ कल जाओ बोला था उन्होंने, तो आज रात रुके और कल सवेरे स्नान करके आए। तो उन्होंने, उनको बड़ा भोर के समय अंधेरा होता है, तो बड़ा प्रकाश नजर आया और एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, राज वस्त्र पहना हुआ, राज अलंकार पहना हुआ, राज मुकुट पहना हुआ यहाँ पर उपस्थित है किनारे पे अपने कुंड पे, और वो जल में स्नान कर रहा है। और वो यहाँ तो बात ठीक थी, लेकिन वो जो उसके बाद जो कर रहा है बड़ा अजीब था। वो कुंड में स्नान कर रहा है और कुंड के बाहर आकर उसके रज में लोट पोट हो रहा है। ही इज रोलिंग इन द डस्ट एट द बैंक्स ऑफ हिज कुंडा, और फिर अपने को रज में लोटपोट करके फिर पानी में जा रहा है, फिर स्नान कर रहा है, फिर लोटपोट हो रहा है, ऐसे बार बार कर रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, रे एक तो इस आदमी को मेरे राज्य में कभी देखा नहीं, तो मेरी तो प्रजा है नहीं, ये नया ही कोई व्यक्ति है, और जो कर रहा है वो भी बड़ा अजीब कार्य कर रहा है। तो गए बड़े नम्रता से, बोले महाराज जी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो महाराज जी कहते हैं कि मैं प्रयागराज हूं। अच्छा, दंडवत प्रणाम किया तुरंत। अरे तो हम तो आपके पास ही निकल रहे हैं, टिकट विकट सब बुक हो गया हमारा, आने वाले थे आपके पास, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ऐसा है कि साल भर हमारी सेवा उधर होती है इलाहाबाद में। हम लोग वहां, हम वहां रहते हैं और सब दुनिया भर के लोग, पापी लोग हमारे अंदर आके स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ देते हैं, वही हमारी सेवा है उनका पाप लेना। फिर हम अपने आप में उनके पाप से दूषित हो जाते हैं। फिर हम लोग साल में हमको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, अरे इतवार हो, सोमवार हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली, दशहरा, कोई छुट्टी मिलती नहीं। सब लोग आके हमारे अंदर डूबते रहते हैं, उल्टा छुट्टी के दिन पे ज्यादा डूबते हैं है ना, छुट्टी के दिन पे ज्यादा भीड़ होती है। सर इतवार को लग के 3 छुट्टी आ गए तो और ज्यादा डूबते हैं। बाकी दिन सब शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, पाप करते हैं, और फिर छुट्टी का समय निकाल के पिकनिक मनाने के लिए यहां आ जाते हैं और स्नान करके बोलते हैं चलो भाई जितना गंदगी है साफ कर लो। और हमको साल में केवल एक दिन छुट्टी मिलती है, एक CL, अक्षय तृतीया को कैजुअल लीव बोलते हैं उसको उस दिन हम यहां आते हैं। साल भर का जितना मैल जमा किया है वो तो यहां पर आकर साफ करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र होकर फिर दोबारा मतलब काले काले होकर आते हैं और फिर चमकते हुए बनकर यहां से दोबारा अपनी सेवा करने को चले जाते हैं। अच्छा, अरे बाप, क्या बात है। फिर देखा उसरे किनारे में तो बहुत सुंदर सुंदर देवियां जो हैं, प्रकाशमान, सुंदर, संपन्न, वो भी वही कर रही हैं। एक नहीं, ये तो एक ही थे, ये तो बहुत सारी नदियां, सब देवियां वही कर रही है, स्नान कर रही है, लोटपोट हो रही है, स्नान कर रही है, लोटपोट हो रही है। भाई देवियों तुम क्या कर रही हो? बोले मैं गंगा हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं कावेरी हूं, नर्मदा हूं, शरयू हूं। हाँ, अच्छा, क्या कर रही हो? बोले साल में एक बार यहां पर आकर अपने पाप को धो लेते हैं। सब दुनिया भर के लोग हमारे अंदर आके स्नान करते हैं, सब जगह हम लोग बह रही हैं, तो एक दिन हम यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, पाप से मुक्ति पाते हैं और फिर अपनी सेवा करने को चले जाते हैं। नंद महाराज ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया और रिफंड भी ले लिया उसका टिकट कैंसिल। जरूरत क्या है? जिसके पास शुद्ध होने को जा रहा है वो खुद यहीं आके हमारे कुंड में शुद्ध हो रहा है, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा पावन सरोवर। पहले था नंद सरोवर, बाद में उसका नाम पड़ा पावन सरोवर, जो पावन करने वाले लोगों को भी पावन कर देता है ना। कोई ऐसा होता है ना, सम पीपल आर ट्रेनर्स, नो दे ट्रेन पीपल, एंड देयर आर सम ट्रेनर्स हु ट्रेन ट्रेनर्स, एंड देन दे ट्रेन पीपल हु आर ट्रेनर्स हु ट्रेन अदर्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को शुद्ध कर देते हैं, धाम, नदियां, सब, लेकिन उनको भी शुद्ध करने वाला कोई होता है, उनको भी साफ करने वाला, वो है ये पावन सरोवर। एक और कथा है जो मुझे महारानी ने बताई, वो ये है कि मतलब अलग अलग लीला है भगवान की। उसमें महाराज, जब नंद महाराज जा रहे हैं तो कन्हैया ने कहा कि बाबा ऐसे करो ना, एक गिरिराज की परिक्रमा लगा के फिर जाओ, अच्छा रहेगा ना, गिरिराज की परिक्रमा तो कितनी बड़ी चीज़ है। तो बाबा ने कहा अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं, चलो परिक्रमा लगा के जाते हैं गिरिराज की, बड़ी पवित्रता प्राप्त होगी, अच्छा मुहूर्त होगा, अच्छा भावना होगी। तो परिक्रमा लगाने गए सब ब्रजवासी लोग, नंदगांव से परिक्रमा लगा रहे, तो देखा तो ये लंबा चौड़ा आदमी, उसके शरीर पे काले काले धब्बे, आधा सफेद आधा काला, और वो दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। पता ना, आपने देखा ना कल, कुछ लोग दंडवत लगा रहे हैं, जहां पर हाथ है वहां पर वापस जाके लेट जाते हैं, दंडवत करते हैं, फिर आगे जाते हैं। हम लोग चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, उसको 7-8 दिन लगते हैं, दिन में 8-9 घंटा लगाते हैं, फिर विश्राम करते हैं, फिर अगले दिन से फिर आगे से वहां सर, वहां पत्थर कुछ रखते हैं निशाना, फिर आगे करते हैं, फिर 7-8 दिन के बाद जैसे क्षमता होगी, शक्ति होगी, वैसे ब्रजवासी लोग बड़े प्रेम से, आपने लगाया दंडोती? हाँ, सब ब्रजवासी वैसे जितने भी जानता हूँ सब लोगों ने लगाई है, औरतें, आदमी, बच्चे, सब लगाते हैं, बूढ़े बूढ़े भी लगाते हैं सब। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 21 दंडवती, मतलब एक जगह 21 दंडवत, फिर आगे 21 दंडवत, कुछ लोग 108 दंडवती परिक्रमा करते हैं, एक ही जगह 108 दंडवत लगाते हैं, और ऐसे कई महीने लगते हैं उनको, 3.5 महीना, 4 महीना,
सालों लगती है,
फिर साल भी लगते हैं। अपना झोपड़ी बना देते हैं पहियों वाला, उसके अंदर रहते हैं और वहीं से आगे परिक्रमा चालू कर देते हैं। तो एक व्यक्ति बड़ा लंबा चौड़ा, लगता है कि भाई वो यहाँ का नहीं है, बाहर का कोई आदमी है, काले काले धब्बे और कुछ जगह पे सफेद, ऐसा वो दंडवती परिक्रमा कर रहा है। तो मैया ने देखा, बाबा ने देखा, कन्हैया जी भी थे, बोले कौन है ये आदमी? बोले बाबा जाओ पूछो उसको, पूछो कौन है, ऐसे कैसे हो, आपका हालत हो गई आपकी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं प्रयागराज हूँ, मैं साल में एक बार यहाँ पर दंडौती परिक्रमा लगाता हूँ। और फिर ये आधा आधा कैसा, पर दंडौती परिक्रमा आधी हो गई ना, अभी आधा साफ हो गया, आधा बाकी है, तो जब पूरी होगी तो पूरा हो जाएगा, फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तब भी उन्होंने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। ऐसे उन्होंने एक बार गंगा जी की महिमा सुनी। हाँ, समय बहुत जल्दी भागता है। गंगा जी की महिमा सुनी तो क्या कथा सुन रहे थे नंद बाबा, सब बाल बाल बैठ के कथा सुन रहे थे। कथा में सुना कि नंद बाबा बैठे हुए हैं और कथा चल रही है। कथा में प्रसंग आता है कि गरुड़ जी अपने भक्ष को, सांप को पकड़ा हुआ है उन्होंने, और वो सांप को लेके खाते हैं, सांप को वो उनका खाना है, वो तो उड़ रहे हैं उसको। अचानक वो गंगा जी के जल के यहाँ पर थोड़ा झुक गए ऐसे, और सांप बहुत लंबा होता है ना, ऐसा दोरी की तरह होता है, तो सांप की पूंछ जो है वो गंगा जी के जल को स्पर्श कर गई, और झट से वो सांप का रूपांतर विष्णु दूत में हुआ, चतुर्भुज विष्णु दूत बन गए, मतलब उसकी सारूप्य मुक्ति हो गई, सांप का रूपांतर वैकुंठवासी शरीर का हो गया। तो गरुड़ जी आश्चर्य हो गए, मेरे हाथ में तो सांप था, अभी तो विष्णु दूत बन गए। तुरंत आदर के साथ में उसने हाथ से निकालकर उसको पीठ पे धारण किया, सम्मान के साथ में उसको वैकुंठ ले गए, उसको वहां छोड़ के आए। और वो कथा में उड़ गए, खड़े हो गए नंद बाबा, अब भी जाना है गंगा जी के पास। अभी मैं कथा कर रहा था, उड़ गए तो बोला बैठो बैठो था मैं अभी, तो बोले नहीं अब भी जाना है। तो फिर कन्हैया जी को अच्छा नहीं लगा, क्यों जाते हो ब्रज छोड़ के आप? नहीं नहीं गंगा जी को सांप को भी स्पर्श करते ही मुक्ति हो गई उसके, वैकुंठ में गया वो, हमें जाना है। तो कन्हैया ने कहा मत जाओ और मेरे संग आ जाओ। सब लोग गए उसके पीछे। अरे छोटा सा क्यों ना, वो कान्हा सबका प्रिय है, उनकी बात मान लेते वो, तब बोला था ना इंद्र जी की पूजा मत करो, तो भी मान लिया उन्होंने, अभी भी चले उनके पीछे पीछे। गिरिराज जी के बीच में लेके आया उनको, और मन से उन्होंने गंगा जी को आह्वान किया, तो मन से उनके हृदय से ऐसे गंगा जी प्रकट होते हुए सबको नजर आई। वो क्या कहते हैं उसको, मगरमच्छ पे, क्रोकोडाइल पे बैठी हुई चतुर्भुजा वाली गंगा देवी जो है अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ में उनके हृदय से प्रकट होकर उनके सामने खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, नंद बाबा, बड़े बड़े ब्रजवासी बालक अपने ग्वाल बाल हैं, बड़े बड़े गोपाल सब देख रहे हैं कि हमारे छोटे से कान्हा को इतनी बड़ी देवी गंगा जी प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है कि क्या करूं आपके लिए, किम कर रहा, क्या सेवा करूं। तो कहे सबके सामने भगवान इतने से बालक आदेश दिया उनको, अपने जल को यहाँ पर प्रकट करो, हमारे बाबा स्नान करेंगे। सबके सामने गंगा जी ने अपना जल वहां भर दिया, एक विशाल कुंड बना, मानसी गंगा, मन से निकली हुई गंगा। अभी क्या उसको आर्गुमेंट करेंगे, वो क्या विवाद करेंगे, सबके आंखों के सामने देखा गंगा जी प्रकट होकर जल दिया वहां पर। अभी फिर भी कहेंगे आप जाएंगे अभी हरिद्वार को, तो फिर वो कैसे मानेंगे। तो सब लोगों ने अपना प्लान कैंसिल करके वहीं पर स्नान किया मानसी गंगा में। क्या मतलब है इसका, कि ब्रज में जब आप आते हो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सारे धाम यहाँ पर विराजमान है। मैंने कहा ना आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हाँ द्वारका तक यहाँ पर है, गोमती नदी भी है, भगवान ने वहां पर आंसू बहाए थे, और गोपियों के पास खबर आई थी कि वो हमको याद करके रो रहे हैं, नदी बनी उसकी गोमती नदी। तो जब लौट के आए उसको, क्या नाम उसका, दंतवक्र को मारकर मथुरा से यहाँ पर आए मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया अरे हमने सुना कि आप बहुत रोते थे वहां पर द्वारका में, एक नदी वदी बनी है उनकी, हमको यहाँ दिखाओ, दर्शन कराओ। तो भगवान ने पूरा द्वारका, द्वारका का सागर और वो गोमती नदी यहाँ प्रकट की है कोशी में। कोशी यानी कि नंद बाबा का कोषा कोश आगार है वहां पर, इसलिए कोशी नाम पड़ा है। वहां पर भगवान ने द्वारका प्रकट की है। इस तरह से ब्रज में क्या नहीं है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, श्रीलंका है, रामेश्वर है, सेतु बंद है, गया है, हाँ क्या नहीं है यहाँ पर, अनंत कोटि तीर्थ और धाम यहाँ पर बसे हुए हैं। और फिर वहां जाएंगे तो खाली पाप मोक्ष करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो पाप मोक्ष के साथ में प्रेम भी देंगे वो, तो यहाँ पर करना बड़ा आसान है। केदारनाथ पे चढ़ने के लिए तो घंटों घंटों लगते हैं, 19 घंटा लगते हैं कभी घोड़ा पर बैठ के या चल के, इतनी ठंड है, ऑक्सीजन भी नहीं वहां पर। यहाँ पर केदारनाथ में कितना मिनट में पहुंचते हैं, 15 मिनट में चढ़ सकते हैं आप, वही केदारनाथ है, कोई कमी नहीं उसके अंदर। तो उल्टा वो आसान भी है, अधिक दयालु भी है, प्रेम को भी देता है, सब कुछ देता है आसानी से। तो कभी समय निकाल कर आ जाओ और सब दर्शन करो, और यहाँ पर आने के बाद में कहीं और जाने की कामना मत करो, ये अंतिम स्टेशन है, इसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। हाँ वो हम लोग भी मस्जिद जाएंगे, मतलब चर्चगेट जाएंगे, फिर ग्रांटोड में आएंगे, फिर चर्नी रोड जाएंगे, फिर ग्रांटोड आएंगे, ऐसा क्यों करेंगे। चर्चगेट पहुंच जाओ, खत्म, लास्ट स्टेशन आ गया वो, उसके आगे पीछे करने की जरूरत क्या है। ये आध्यात्मिक जीवन का गंतव्य स्थान है। ओके, तो समुद्र मंथन हुआ था, बड़ी लंबी कहानी भागवत में आती है, आपको जरूर सुनाएंगे, आज उसका दिन है, बहुत सुनना भी जरूरी है। संक्षिप्त में क्यों ना बताएंगे आपको, देवताओं को राक्षसों ने बहुत परास्त कर दिया था। बलि महाराज और बलि महाराज ने अपने गुरु की बड़ी सेवा की थी, देवताओं ने दुर्वासा का अपराध कर दिया था, तो उसको तेजहीन हो गए थे वो। तो विष्णु के पास गए, विष्णु ने कहा कि अभी यह समय ललकारने का नहीं है, सुलह कर लो, सुलह समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो, क्षीर सागर को प्रस्ताव रखो, मंथन करेंगे, इसमें से अमृत निकलेगा तो दोनों बांट के लेंगे, ऐसा प्रस्ताव रखो। प्रस्ताव रखा, पास हो गया, देवता लोग आ गए, राक्षस लोग आ गए, सब लोगों ने मंथन करना शुरू किया, उनसे बनी नहीं। फिर भगवान पर्वत बने, भगवान अजीत बने, भगवान कुर्म बने, और भगवान ने अमृत समुद्र मंथन में बहुत सहायता किया। और मंथन जब जोरदार शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें से विष निकला, और विष को फिर शिव जी को बुलाया गया। भगवान स्वयं भी उसको पी सकते थे, लेकिन भगवान अपने भक्तों का गौरव करना चाहते हैं कि हमारे भक्त कितने महान होते हैं। सब देवता भाग गए, शिव जी महाराज आए, सब विष पी लिया उन्होंने, तब से महादेव बन गए वो, नीलकंठ बन गए। फिर मंथन शुरू हुआ, फिर 14 रत्न उत्पन्न हुए उसके अंदर से, लक्ष्मी जी, ऐरावत, उच्चैःश्रवा, अश्व, घोड़ा, बहुत सारे दिव्य चीजें प्रकट हो गई। उसके अंत में अमृत प्रकट हो गया। अमृत प्रकट होते ही एग्रीमेंट फेल कर दिया सब लोगों ने, राक्षस लोगों ने छीन लिया उसको, भाग गए उसको लेके। फिर युद्ध हुआ, फिर कभी गरुड़ जी के हाथ में आया घड़ा, धन्वंतरी भगवान अमृत को लेकर प्रकट हुए थे मंडल में, घड़ा में, तो गरुड़ जी के हाथ में, तो गरुड़ जी उसको लेकर वहां पर गए वृंदावन में, जो केशी अपना कालिया घाट है ना, कालिया, वहां पर गए, बैठ गए, और ये जानते हुए कि आगे आकर भगवान यहाँ लीला करेंगे, इसलिए उस पेड़ पर थोड़ा अमृत डाल दिया उन्होंने। फिर वहां से गए, जब लड़ रहे थे, भाग रहे थे, तो कुछ अमृत के जो कण थे, बिंदु थे, वो कुछ हरिद्वार में गिरे, कुछ उज्जैन में गिरे, कुछ त्रिवेणी में गिरे, और कुछ नासिक में गिरे, गोदावरी में। तो ये चारों जगह पर उन तिथियों के दिन में, जब वो तिथि आती है, उसमें कुंभ लगता है, एक महाकुंभ, एक कुंभ, एक अर्धकुंभ, ऐसे चार कुंभ लगते हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है त्रिवेणी संगम में, क्योंकि उस तिथि को, जैसे आज की तिथि है, उस तिथि को वहां पर वो अमृत दोबारा प्रकट होता है, और लोग उस समय को पकड़कर उसमें स्नान करना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आज का भी एक दिन है महास्नान का, सब लोग वहां पर भीड़ लगी हुई है, 10 करोड़ लोग वहां पर धक्का मुक्की कर रहे हैं, सब लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोगों ने स्नान भी कर लिया, लेकिन हम तो नंदगांव में बैठे हैं, हम तो वहां बैठे हैं जहां पर वो खुद आते लाइन लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, और यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। आराम से बैठो, स्नान करो, प्रेम से आचमन कर लो, भी भाव रखो कि इस जगह वो जगह है जहां पर स्वयं तीर्थराज, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम स्वयं आता है, इतना सफर करके दूर से स्नान करता है, अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करता है। तो हम भी यहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे व्रत छोड़कर? वहां पर भी उनको ले गए थे हम लोग त्रिवेणी कूप में, अभी जो वहां से आ रहे हैं।
अच्छा,
हाँ, नारायण भट्ट जी ने वहां पर प्रकट किया त्रिवेणी को। सब है ब्रज में, हर चीज है, आपको कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। नंदगांव में, बरसाने में, वृंदावन में भगवान ने सब लोगों को आश्रय दिया है, सब लोग यहाँ पर सलाम करने को आते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं सलाम करने के लिए, यहीं पर सब करो। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उधार दी, सब कामनाएं भी होंगी तो यहीं पर आ जाओ, कुछ कामना नहीं है तो भी यहीं पर आ जाओ, मुक्ति की कामना है तो भी यहीं आ जाओ, और भक्ति चाहिए तो भी यहीं आ जाओ, और कहीं धक्का मत लगाओ, दरवाजा मत खटखटाओ, एक ही दरवाजा को दस्तखत दे दो, वो है कृष्ण का दरवाजा, और वहां नहीं खुलता है तो बसाने जाओ और राधा रानी का दरवाजा खटखटाओ, फिर वो दरवाजा खटखटा दे, सब दरवाजे खुल जाएंगे, कृष्ण के भी खुल जाएंगे और सभी देवताओं के भी खुल जाएंगे, सब खुल जाएंगे। ठीक है, नंद बाबा की जय हो, यशोदा माई की जय हो। एक संत है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, वो कहते हैं कि मैं कृष्ण की भी पूजा नहीं करता, मेरे लिए तो पूजनीय नंद बाबा है, क्योंकि जो पर ब्रह्म है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, गोलोकेश्वर स्वामी नाथ है, वो इनके आंगन में बालक बन के डोल रहा है, उनको खुशी देने के लिए बालक बन के तोतले बोल बोल रहा है, चलने को नहीं आ रहा है उसको, चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, चोरी करके आया, डर रहा है, आकाश में बादल कड़कते हैं तो डर के गोद में भाग के आता है, हाँ, शरारती करता है, नाचता है, कूदता है, इतना आनंद देता है बालक बन के, वो व्यक्ति कितना महान होगा जिसके लिए वो पर ब्रह्म गौलोक छोड़कर यहाँ पर बालक बन के लीला कर रहे हैं, तो मैं उसकी पूजा करता हूँ, ऐसे उन्होंने भजन लिखा है। भाव की बात है, समझने वाली बात यह है कि नंद बाबा और यशोदा का प्यार जो था वो कृष्ण भगवान कभी नहीं भूले। द्वारका में गए, वहाँ रहे, बहुत सारा लीला किया, विवाह किया, 16,108 रानियों से 16,108 महल बनवाए, राजपाट चलाया, लेकिन कभी भी गोपियों को माँ मैया बाबा को नहीं भूले। वो बोले वो माखन का स्वाद तो तुम्हारे 56 भोग में नहीं है, 56 भोग बढ़िया है आपका, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वो तो कुछ और ही था, उसको केवल हम याद कर सकते हैं द्वारका में बैठकर। रोते थे, नदी बनी नदी उनके अश्रुओं की, नंदगांव की ब्रज की याद में। बोले इसकी तुलना कोई नहीं, आपको कहानी बताई कल मैंने, क्या ब्रजवासियों का प्रेम है, वो बताया मैंने वो रज वाला कहानी कल।
अच्छा,
तो यहाँ का प्रेम जो कोई तुलना नहीं करता, वैकुंठ में भी ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, उधर वैकुंठ के अंदर द्वारका अयोध्या मथुरा है उसके अंदर भी ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। सब लोग इस प्रेम के लालायित हैं और ठाकुर जी भी अपने आप को बेच चुके हैं उनके लिए, उनके हो गए, कुछ नहीं कर सकते, उनके अधीन है वो प्रेम के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर रहते हैं। और वैकुंठ, वो कहते हैं वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पर मैं गोपियों का दही और माखन चुरा के खाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भिखारी बनकर आते हैं, चुराते हैं, दंड भी स्वीकार करते हैं उनका, गालियां भी खाते हैं उनकी। वो कहते हैं वेदों में जितने श्लोक लिखे हैं, देवता लोग पुकारते हैं, पुरुष सुक्त, श्री सुक्त, ये सुक्त, वो सुक्त करके प्रार्थना करते हैं, घंटों घंटों, दिनों दिनों, महीने महीने यज्ञ करते रहते हैं, लेकिन मुझे उन सारे मीठे 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 जो गौरवशाली गौरव करने वाले श्लोक हैं, उससे भी यहाँ की गाली जो है मुझे बड़ी मीठी लगती है। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, अरे मैंने ग्वाल बालों को चुराया, आपके लीला में भंग कर दिया, माफ करो माफ करो। उनका मन तो बालकों के पास खेलने के लिए भाग रहा है, कब प्रार्थना खत्म होगी और कब मैं खेलने जाऊंगा, अरे बड़े तुम गलती करते हो, फिर पछताते हो, फिर टाइम पास करते हो मेरा प्रार्थना सुनाते हुए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे खेलना है गुल्ली डंडा, मेरे बालक वेट कर रहे हैं, मुझे खेलने में लेंगे नहीं कल वो। बोले समय पर भाग गया तू, हारते हारते ब्रह्मा का बहाना बना के प्रार्थना सुनने के लिए भाग गया तू, डरते हो। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब ग्वाल बाल उनको कहते हैं कि बड़े हारने के समय पर तू मैया का बहाना बना के भाग रहा है, कल तुझे खेलने में नहीं लेंगे हम लोग, तो कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी डांट और सबसे बड़ा क्या क्या कहते हैं उसको, चेतावनी है ये, क्या बोलते हैं उसको, फियर, सबसे बड़ा भय उनके लिए कि कल मुझे खेलने में नहीं लेंगे ये, क्या करूंगा मैं। तड़पते हैं वो ऐसे, उनके लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना, इंद्र की प्रार्थना, इसका श्लोक उसका श्लोक की कोई वैल्यू नहीं है, उनका मन तो खेल में लगा हुआ है। मैया बुलाने आती है, रोहिणी मैया बोलतेगा चलो चलो बाबा घर में आए हैं जल्दी चलो, तो उनका सुनते नहीं है, तो मैया कहते हैं रोहिणी मैया जाओ, दीदी यशोदा आप ही जाओ, अभी वो मेरा नहीं मानते, यशोदा देवी आते डांटती हैं, कैसे कैसे बच्चे हो तुम, सड़क के बालक हो क्या, समझते नहीं हो, बालक पापा वहां पर वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए, तो ऐसे गंदे बालकों की तरह खेल रहे हो यहाँ पर, तो थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ा मुड़ते हैं मैया की ओर, तो बालक बोलते हैं अच्छा मैया का बहाना बना के भी जा रहे हो, अभी हार रहे हो इसलिए, तो फिर बच्चों की तरह मुड़ते हैं, फिर मैया डांटती है, फिर मैया की तरह मुड़ते हैं, फिर बच्चे डांटते हैं, फिर मुड़ते हैं, परब्रह्म है ये, हाँ अखिल सृष्टि के नायक है ये, सब देवता कांपते हैं उनसे, उनके आदेश पर सूरज चांद उगते हैं, हाँ चंद्र अपनी कक्षा में घूमता है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है उनके आदेश से, और ये ग्वाल बाल जो गंवार बालक गोटी खेलते हैं उनके साथ में डर रहे हैं, वो क्या भाव है ये, ये तो प्रेम है, प्रेम में वश हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा पद क्या है, मेरा अधिकार क्या है, सब ब्रह्मा वहाँ सब बालक देखते हैं, अरे कौन है ये, पर ब्रह्म है कि बालक है, कोई नटखट बालक है, ये पर ब्रह्म है, फिर आते हैं देखने के लिए, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूरया, मुह्यंती मतलब सब सुर जो है सुरगण देवता भी मोहित हो जाते हैं इनकी लीला को देखकर कि क्या है क्या ये, लोग कहते हैं कि हमारे मालिक हैं और यहाँ पर तो लोटपोट हो रहे हैं, चोरी चोरी कर रहे हैं, किसी घर में पेशाब कर रहे हैं, किसी के पानी कान में पानी डाल रहे हैं, हाँ बादल के कड़कते हुए माता के गोद में भाग रहे हैं, कि परब्रह्म है कि कौन है ये। नंद बाबा वो चर्चा कर रहे थे एक बार कि ये तो बड़ा प्रतापी है, गिरिराज को उठाया, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सब ग्वाल बाल कहते हैं अरे ये कोई देवता होगा, ये कोई ऋषि होगा, कोई तपी ध्यानी सिद्ध महात्मा होगा कोई, नंद बाबा तूने तो बड़ा तपस्या किया है पिछले जन्म में, ऐसा बालक तेरे घर में आया है कि जो तो पता नहीं क्या ताकत है उसके अंदर, तो ठहाका मार के हंसते, पेट पकड़ पकड़ के हंसते, यहां तक कि गिर जाते हैं अपने आसन से, जमीन पर लौट रहे हैं, हंस रहे हैं, तो तुम कह रहे देवता है, ये तो पेशाब करता है माखन नहीं मिलने पर, हमने सुना नहीं कभी देवता इंद्र देवता कभी माखन नहीं मिलने पर पेशाब कर लेता है, और देवता लोग डरते नहीं किसी को, ये तो आकाश में बादल गरजते ही मैया के गोद में भागता है, ये देवता कैसे हो सकता है, ये कोई सिद्ध बाबा नहीं हो सकता। इसके इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर, जरा सी बात पर गुस्सा कर देता है, जरा मक्खन नहीं मिला तो कितना आतंक मचा देता है, शरारत करता है, भेष बदलता है, क्या क्या करते रहता है। देवता लोग बड़े इत्मीनान से रहते हैं, सम्मान के साथ रहते हैं, बड़ा उनका दिव्य गुण होते हैं उनके अंदर। ऐसा देवताओं का एक भी गुण इस बालक में नहीं है, इसलिए ना देवता है, ना महात्मा है, ना ऋषि है, ना सिद्ध है, ये तो मेरा बालक है, उसको बालक ही रहने दो, देवता मत बनाओ। और हंस हंस के फिर जो भगवान का गौरव गुणगान हो रहा था वो सब भूल जाते हैं और कन्हैया की नटखट लीलाओं के बारे में चर्चा करते करते खुश हो जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तो ऐश्वर्य प्रवेश करना चाहता है लेकिन माधुरी जो है उसको भगा देता है, यहाँ के प्रेम के सामने जो ऐश्वर्य की बातें होती भी हैं तो सबको उसको भूलना पड़ता है कुछ देर बाद में। ग्वाल बालों का जो प्रेम है वो बना रहे इसलिए भगवान भी उसको ऐश्वर्य को अंदर आने देते नहीं है। मुंह खोल दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया तो मैया तो बोले अरे ये तो परमात्मा है, परब्रह्म है, ये तो मैं पूजन करना चाहिए उसका। तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी वो, माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो आपको डांटा था, दंडा दिखाया था, भय दिया था, कितनी बार दंड भी किया था आपको। नहीं, अभी तो मैं गलती नहीं करूंगी, मैंने बहुत अपराध किए हैं। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, अरे मेरी मैया अगर मेरी पूजा करने लगेंगी तो मैया कैसे बनेगी वो मेरी। मुंह बंद कर दिया और एक हंसी, मीठी मुस्कान, स्मित हास्य कर दिया। जैसे बालक ने मुंह बंद कर दिया और हंस पड़े, सब भूल गई मैया क्या मूड में देखा था, सब भूल गई वो, क्या मैंने मुझे लगा था और क्या पश्चाताप कर रही थी, सब भूल गई। तुरंत गोद में लगाया और स्तनपान करने लगी। तो भगवान भी नहीं चाहते कि उनके प्रिय भक्त जो है उनके बारे में जाने कि वो कौन है, क्योंकि वो प्रेम का स्वाद जो है हमेशा चखना चाहते हैं, इसलिए वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़ के यहाँ पर आते हैं। ऐसा नंद भवन है, नंद बाबा है, बहुत प्रेमी सब भक्त हैं यहाँ के। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, किनारे से उतरो और जल का आचमन करो, 3 बार जल सर पर छिड़को, बड़े प्रेम से प्रयागराज को प्रार्थना करो कि हम पर कृपा करें और हमें यहीं बसाएं और कभी भी आपके पास लेके न जाएं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण बलराम की जय।